بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. امریکہ میں ایک آرگنائزیشن ہے ٹیڈ کے نام سے, TED, اور وہ سیلف ڈیولپمنٹ اور تربیت سازی کے حوالے سے مختلف سپیکرز کو مدعو کرتی ہے اور ان کو 20 منٹ دیے جاتے ہیں کہ 20 منٹ میں آپ کو اپنا مدعا بیان کرنا ہے. تو اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے تھے کہ امریکہ اسپیچ کے حوالے سے بہت آگے چلا گیا ہے, لیکن مسجد القائم نے ہمیں 15 منٹ دیکھ کے امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا. تو وہ تو امریکہ سے آگے چلے گئے, ہم ان کی توقعات پہ پورا اترتے ہیں یا نہیں یہ آپ فیصلہ کریں گے. اگر میں اپنی بات کروں تو طولانی بھی ہوگی اور محمل بھی ہوگی, ادھر ادھر کی باتیں ہوں گی, ہو سکتا ہے آپ کو جمعیاں آنے شروع ہو جائیں, ویسے بھی آخری وقت ہے. تو بہتر یہ کہ کسی عالم کی, کسی مجتہد کی اور کسی باتقوی شخص کی گفتگو کی جائے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ پچھلے ہی ہفتے زیارت عراق میں آیت اللہ عظمیٰ علی سیستانی صاحب سے اور آیت اللہ بشیر نجفی صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی, اور وہاں پہ جو قافلے میں لوگ تھے زیادہ تر مغربی ممالک کے افراد تھے, ہمارے پاکستانی افراد کوئی بھی شامل نہیں تھا. ہم خصوصی اجازت کسی طرح لے کے وہاں پہنچ گئے تھے. جب ہم نے اپنے قافلے والوں کو پوچھا کہ آپ کیوں نہیں لے کے جاتے, تو بڑی مشکل سے استدار کے بعد انہوں نے جواب دیا, ہمارے والے اتنے اختلافی سوالات پوچھتے ہیں کہ منتظمین کہہ دیتے ہیں کہ آئندہ آپ نہیں آئیے گا. خیر, ہم کسی حوالے سے مغربی قافلہ تھا, آیت اللہ سیستانی کے پاس ہم پہنچے. تقریباً 3 گھنٹے ہمارا وہاں پہ اسٹے رہا اور 1 گھنٹے سے زیادہ ماشاء اللہ گفتگو ہوئی, سوال جواب پوچھے گئے. اور یقین کیجئے کہ مغرب میں رہنے والے افراد اتنے زیادہ پریشان ہیں اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے کہ ہم ان کے مقابلے میں سو رہے ہیں, لٹرلی سو رہے ہیں, اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہے, بلکہ نہ صرف اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے, اپنی بھی فکر نہیں ہے. تو وہ زیادہ فکر مند ہیں, اور کتنے زیادہ فکر مند ہیں آپ کو انشاءاللہ اندازہ ہو جائے گا. تقریباً 250-250 افراد ہمارے ساتھ شامل تھے, اور آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ کسی مرجع سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے نہیں بیٹھا, وہ پوری دنیا کو دیکھ رہا ہوتا ہے. آیت اللہ سیستانی کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ 6 مہینے تک ان کے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے, کیونکہ وہ مسلمانوں سے زیادہ عیسائیوں کو ٹائم دے رہے ہیں, مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلموں کو ساتھ دے رہے ہیں, کہ جس طرح انہوں نے وہاں پہ امن و امان قائم رکھا ہے, جس طرح فلوجہ, بصرہ, موصل کے عیسائی آ کے ان کو مبارکباد دے رہے ہیں, ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ نے ہماری عبادت گاہوں کو بچایا, جس طرح امن و امان قائم کیا ماشاء اللہ. تو سیاسی بصیرت اپنی جگہ اور اخلاقی تربیت اپنی جگہ. جو سوال پوچھا جاتا ہے, یقین کریں 15 منٹ سے کم کا جواب نہیں ہوتا. ہمارے یہاں کنسلٹنٹ آپ کو 5 منٹ سے زیادہ نہیں دیتا ہے. 2-4 سوال پوچھ لیں آپ, وہ کہتا ہے کہ نیکسٹ. کنسلٹنٹ جو ہے وہ 5 منٹ سے زیادہ آپ کو ٹائم نہیں دیتا. آیت اللہ سیستانی, یقین کیجئے, جب سوال جواب کا سلسلہ ہو رہا تھا تو جو انتظامیہ میں لوگ شامل تھے, 3 مرتبہ ان کے جو منتظمین تھے, وہ خود عالم دین ہی ہوا کرتے ہیں, 3 مرتبہ آئے اور ہماری طرف جو ہے وہ بے کسی سے دیکھا کہ پلیز آپ لوگ جلدی کریں, بہت ٹائم ہو گیا ہے. اور وہ بہت ہی, جسے کہتے ہیں کہ لگ رہا تھا کہ وہ ہمارے لیے ہی بیٹھے ہیں, ہمارے سوال کی جسے کہتے ہیں جواب دہی کے لیے بیٹھے ہیں اور ہماری کلیریفیکیشن کے لیے بیٹھے ہیں. بہرحال, بغیر کسی طولانی گفتگو, مقدمے کے, تمہید کے, ان سے جو سوالات پوچھے گئے, بہت سارے سوالات تھے, لیکن جو یہاں پہ موضوع چل رہا ہے اس حوالے سے چند سوال جو ہمارے ذہن میں رہ گئے آیت اللہ سیستانی کی ملاقات کے دوران اور آیت اللہ بشیر نجفی کی ملاقات کے دوران, وہ آپ کے سامنے گوش گزار کر دیں. آیت اللہ سیستانی سے سوال پوچھا گیا کہ ہم بچے کی تربیت کی ابتدا کب سے کریں. انہوں نے کہا جتنی جلدی ہو سکے کر دیں. اب یہاں پہ بڑا مسئلہ جسے کہتے پیدا ہوتا ہے. ایک زمانے میں جو ہے لوگ کہا کرتے تھے کہ بچے کو جو ہے 7ویں کلاس میں, 7 سال کی عمر میں اسکول میں ڈالو, پھر کہا 6 سال, پھر کہا کہ 3 سال. اب جو ہے وہ 2.5-2.5 سال کی مونٹیسری جو ہے وجود میں آ چکی ہیں. اب تو یہ ہوتا ہے کہ ہاسپٹل سے ڈیلیوری کے دوران جو ہے آپ اسکول میں نام لکھوا کے اپنے گھر جاتے ہیں کہ کہیں دیر نہ ہو جائے. تو انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی آپ رجسٹر میں نام لکھوائیں گے. تو उन्होंने देखे ये एक मुश्तहिद की और एक आलिम दीन की एक फहम फरासत होती है कि जब भी वो कोई गुफ्तगू करता है, गुफ्तगू से जो इश्काल पैदा होता है फौरन उसको एड्रेस करता है और बता देता है कि आपके जहन में जो सवाल पैदा हो रहा है, जो इश्काल पैदा हो रहा है मेरी इस बात से, उसका भी जवाब ये है। तो उन्होंने ये कहा कि बच्चे की गुफ्तगू और बच्चे की तरबियत जल्द अज जल्द कल कीजिए, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप अजान व अकामत में जल्दी करते। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है और हम साहब इस तजर्बे से गुजरे हुए हैं कि बच्चे की डिलीवरी का, बच्चे की पैदाइश का इंतजार होता है फौरन अजान व अकामत। मुझे बताइए कि बच्चों को क्या अजान का एक लफ्ज भी समझ में आता है? बच्चे को क्या अकामत का एक लफ्ज समझ में आता है? नहीं समझ में आता। लेकिन क्यों कहा गया? इसके असरात होते हैं। आजकल तो मगरिब दुनिया में बाकायदा इस पर रिसर्च हो रही है और उन्होंने बिल्कुल प्रूव किया कि जो हामला औरत औरत होती है, प्रेग्नेंट वुमेन होती है, अगर उस घर में झगड़े हों, उस घर में खुलफिशार हो, तो उसके असरात उस बच्चे को मुंतकिल होते हैं। मौसीकी के अलग असरात मुंतकिल होते हैं, जैसे अभी जो है सैयद वसीम हमने कहा कि जिस तरह मुख्तलिफ चीज़ें खाने से और मुख्तलिफ अस्कार करने से बच्चे की तरबियत खुद माँ के पेट से शुरू हो जाती है। इसमें एक वाक़ा भी मिलता है, सैयद मुर्तज़ा आलमुलहुदा, उनकी भी माशाल्लाह हमने ज़्यारत की काजमैन में, जब वो अपने ज़माने के मर्ज़े आलम बने तो लोग दौड़ते हुए उनकी माँ के पास गए और कहने लगे कि मुबारक हो, आपका बेटा मर्ज़े आलम बन गया। और माँ बड़े अदाए बेनियाजी से सर उठा के फिर झुका लिया। उन्होंने कह लेंगे इतनी बड़ी कामयाबी और आपका कोई रिस्पांस नहीं, कोई रद्द अमल नहीं। कहेंगे अगर तुम मेरे बेटे को, मेरे बेटे की पैगंबरी की बशारत भी लाते हो तो मैं हैरान नहीं होती। ये वो बेटा है कि जिसको मैंने बगैर वजू दूध भी नहीं पिलाया है। मुझे बताइए हमारी माएँ आजकल ये करती हैं? हमारी माएँ यकीन करें, अभी डॉन में बाकायदा आर्टिकल छपा है कि आजकल की माएँ तीन तीन चार चार साल के बच्चे को टैबलेट दे देती हैं। पहले जो है वो सोने की टैबलेट या सोने का सिर्फ हाइड्रोलिन पिलाया जाता था, अब जो है वो टैबलेट यानी कंप्यूटर जो लैपटॉप का जो टैबलेट होता है वो दे दिया जाता है और उसमें वो खेल रहा होता है। दो साल की बच्ची, हमारे जानने वाले अभी मलेशिया से हैं, दो साल की बच्ची, वो कह रहे हैं कि भाई किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है क्यों, बच्ची को दे दें। रो रही है, एंड्रॉयड मोबाइल बच्ची को दे दें क्या, मतलब क्या करेगी? कह रहे हैं वो खेलेगी, उसमें यूट्यूब पर कार्टून होते हैं वो देखेगी। उनको उसको पता है कि हाँ, उसको पता, यकीन कीजिए उसको मोबाइल दिया गया दो साल की बच्ची को, यूट्यूब खेल के वो कार्टून पर जाके आइकन्स होते हैं वो, तो वो क्लिक करके वो बाहर पहुंच गई। लेकिन बहरहाल बहुत सारे राइट क्लिक बाद में रॉन्ग क्लिक्स साबित होते हैं, आप हम इस तजुर्बे से वाकिफ हैं। तो ये कितनी आप देखिए कि सूरत से ज़माना जो है वो आगे की तरफ जा रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि जितनी जल्दी हो सके, जितना आज आप फिक्रमंद हैं कि मैं जितनी जल्दी हो सके बच्चे को स्कूल में दाखिल दिलवा दूँ, उतनी जल्दी, उससे ज़्यादा जल्दी आपको बच्चे की तरबियत के हवाले से करनी है। दूसरा सवाल जो उनसे पूछा गया मगरिब में रहने वाले तमाम अफराद थे, उनके उन्हीं के तमाम सवालात मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा सवाल पूछा गया कि हम अपनी लड़कियों की तरफ से बड़े फिक्रमंद हैं, तो जाहिर सी बात है हम अपने लड़के को ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप भेज देते हैं, लेकिन लड़की की बारी आई तो फौरन क्रॉस नहीं। तो उनका हम अपनी जो, लेकिन बहरहाल कुछ फैमिलियाँ हैं वो लड़के लड़कियों समेत बच्चे तमाम, बहरहाल लड़के भी होते हैं लड़कियाँ भी होती हैं, तो वो उन्होंने कहा कि हम लड़कियों की तरफ से बड़े फिक्रमंद हैं, क्या करें? दो टोक ओपन बोल्ड लफ्ज में उन्होंने कहा कि बच्चियों की शादियां जल्दी कीजिए और शादी के बाद जो शादी की रिंग होती है, अंगूठी, वो उनको पहना दीजिए ताकि लोगों को भी पता चल जाए और उनको भी बार बार एहसास होता रहे कि मैं मनकुआ हूँ, मैं जो हूँ मेरी मंगनी हो चुकी है या मैं जो हूँ मेरी शादी हो चुकी है, जितनी जल्दी हो सके। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, कितनी जल्दी? MBA कर ले, डॉक्टर बन जाए। आजकल तो मुझे लगता है यार निकाह ख्वाह जो है वो मौलाना दानिश ये निकाह ख्वाह जो है वो डिग्री देखते हैं। अरे हमारे यहाँ MNA और MPA की डिग्री नहीं दी देखी जाती, वो मैट्रिक पास नहीं होता। आप जो अपनी लड़कियों की फिक्र कर रहे हैं, MBA MNA कितनी? देखिए आप सब बीबी सैयदा के मानने वाले, मैं शायद अल्लाह उनकी शादी कब हुई थी, चले डबल कर लें आप, क्या एज होगी 18 को भी आप जो है वो कहते हैं बहुत कम है, कोई जल्दी नहीं, क्या जरूरत है इतनी जल्दी शादी करने की। हमारे पास एक फैमिली आई अपनी लड़की को लेकर, 18 साल की लड़की थी, इंटर किया था, रिजल्ट नहीं निकला था, और वो कहने लगे कि भाई इस बच्ची की शादी करनी हो, या तैयार नहीं हो रही, रिश्ता बहुत अच्छा है। उन्होंने बच्ची से बात की, बेटा क्या करना है आपको? कहने नहीं शादी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी भाई? मुझे अभी ये पढ़ना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। कहने ठीक, मैंने कहा ठीक है, आप अपने जो शौहर होने वाले शौहर हैं या ससुराल है अपनी अम्मी के थ्रू ये पैगाम पहुंचा दें कि शादी में ये शर्त है कि बच्चे की तालीम जारी रहेगी और फिर आप जो है वो शादी कर लें, इसमें कोई मुजाका नहीं। लड़का बिल्कुल जिसे कहते हैं दीन दुनिया हवाले से बिल्कुल लड़की के लिए मैच था, कुफूर था। तो बतलाया कि आज वो लड़की इंटर कर रही है, मतलब इंटर के बाद जो बीए होता है, एमए जो भी है वो कर रही है और अपना शादी का सिलसिला भी जारी है। तो यकीन करें इसमें बिल्कुल भी ना घबराएं, बहुत जल्दी, मतलब यहाँ पे मुझे नहीं मालूम 15 मिनट में ये लतीफ़ा सुनाना मुनासिब होगा कि नहीं, कि जब लड़की की उम्र कम होती है, कितनी कम होती है आप खुद ही ब्रैकेट में लिख लें, जब लड़की की उम्र कम होती है तो उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा रिश्ता आया है, तो लड़की कहती है कि लड़का कैसा है, कैसा है मतलब स्मार्ट है, किस अदाकार नाउज़ुबिल्लाह से मिल रहा है, जरा सी उम्र ज़्यादा होती है तो पूछा जाता है कि तुम्हारा रिश्ता आया है, तो लड़की कहती है कि लड़का कितना कमाता है। अब वो ये नहीं पूछे कि कैसा है, डू द हेल विद, कितना कमाता है, रोकड़ा कितना है उसके पास। और जब उम्र गुजर जाती है उससे पूछा जाता है तुम्हारा रिश्ता आया, तो कहती है कहाँ है, कहाँ है। तो ये नाउज़ुबिल्लाह बहुत शर्मिंदगी की बात है, बहुत अफसोस की बात है। यहाँ पे जो है वो बच्चियों वाले बैठे हुए हैं खमा खाई की तफ्तीश, कि लड़का अमेरिका में है, हमने लड़के को देखा नहीं है, जब तक लड़का आएगा नहीं, हमसे मिलेगा नहीं, फला फला सवालात के जवाब नहीं देगा, हम रिश्ता नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे रिश्ते हमारे सामने के रिश्ते हैं, दीनदार लड़कियों के रिश्ते आए, लड़की हमारी बहुत छोटी है, और जब वही लड़की 2, 4 साल, 5 साल क्रॉस कर जाती है, फिर आप रो रहे होते, और फिर उन्हीं लोगों को जिनको आपने मना किया हुआ होता है जाके दामन फैला रहे होते हैं कि हमारी लड़की की कोई अगर रिश्ता हो मुनासिब तो कर दो। तो ये बिल्कुल, देखिए आगस्तानी का जो है वो मैं जवाब बता रहा हूँ, उसकी तशरीह बस थोड़ी सी अपने अल्फाजों में कर रहा हूँ, कि जितनी जल्दी हो सके। और आजकल का जो ज़माना है, देखिए अपने आपको बेवकूफ़ ना बनाइए, आपका बच्चा वो बहुत कुछ देख चुका है जो आपने 15 साल की उम्र में नहीं देखा था, आपके बच्चे वो बहुत कुछ जान चुके हैं जो 10 साल के बच्चे को जो है वो 10 साल का बच्चा वो कुछ जान चुका है जो हम 20-20 सालों में जाना करते थे। यकीन करें जमाना बहुत आगे निकल गया है। सिर्फ मैंने बताया ना कि एक राइट क्लिक जो कि रॉन्ग क्लिक होता है बच्चे को कहां से कहां पहुंचा देता है, और यकीन करें इतना अफसोस होता है, एंड्रॉयड मोबाइल आप स्टेटस कॉम्प्लेक्स के चक्कर में बच्चों को हाथ में पकड़ाते हैं, उसके पास S7 है, मैं तुम्हें S8 दिलाऊंगा, बाबा भी S8 आया नहीं है, 7 ही है, अच्छा ठीक है मैं तुम्हें S7 दिलाऊंगा, तुम फिक्र ना करो। तो ये जो कंपटीशन की दौड़ है, ये जो स्टेटस कॉम्प्लेक्स की दौड़ है, उसमें आपका बच्चा बिगड़ रहा है, खुदा रहा। पहले क्या होता था कि हम बच्चे को कहा करते थे कि क्या तुम दिन भर गलियों में खेलते रहते, चलो कमरे में, चलो घर में। अब जो है कमरे से निकाला जाता है, तुम क्या कर रहे हो अंदर, चलो बाहर। बच्चा आपके साथ आपके सोफे पे बैठा होता है, आपको नहीं मालूम वो क्या कर रहा है, आप पेंतरे बदल रहे होते हैं, ये पता नहीं क्या कर रहे हो, दिखाओ जरा क्या। और बार बार पूछना भी बड़ा अजीब सा लगता है, और बच्चे भी बड़े स्मार्ट है, मिनिमाइज करना, क्रॉस करना, हिस्ट्री डिलीट करना कोई मसला नहीं है। तो इन इस्तलाहात से भी वाकिफ हो जाइए, और बच्चे को इन चीज़ों से बचाइए, और इब्तिदा से कोशिश कीजिए शादी में जल्दी कीजिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अभी मैंने बीबी सैयदा की मिसाल दी, आप कहेंगे भाई उनको आप कहाँ हमारी बच्चियों से, एक बड़ा मसला है हमारे यहाँ, क्या कहाँ मासूमीन की बात लेके बैठ गए, हम कहाँ वो कहाँ, जब जन्नत की बात आई वो हम वहाँ जो वहाँ, मतलब जहाँ वो होंगे वहाँ हम होंगे, और जब अमल की बात आई वो कहाँ वो हम कहाँ। अल्लामा मजलिसी के नाम से कौन वाकिफ नहीं, दारुल अनवार अल्लामा मजलिसी, बार बार उनका नाम रिपीट होता है, तकी मजलिसी उनके वालिद थे। देखिए बिल्कुल एक अजीब वाकया है जो लगता है कि शायद ये रसूल के जमाने का वाकया, रसूल के जमाने का वाकया नहीं है। मदरसे में दर्स दे रहे थे, दर्स देने के बाद घर उनके पीछे था, कहाँ मदरसे के पीछे वो गए, उनकी जौजा ने कहा कि मुबारक हो आपकी बच्ची बालिग हो गई, फौरन कोई काम किए बगैर वापस मदरसे आए, कर लेंगे कि है कोई जो मेरी बच्ची से शादी करे, मेरी बच्ची बालिग हो गई। उस जमाने के तुलबा भी ऐसे हुआ करते थे कि तमाम के तमाम तुलबा मदरसे में पढ़ने वाले इस काबिल थे कि आलिम दीन उस स्कूल इस मदरसे का प्रिंसिपल कोई शर्त नहीं रख रहा है, सिर्फ ये कह रहा है कि तुम में से कौन शादी करेगा मेरी बेटी। सबसे गरीब लड़के ने जो है वह हाथ उठाया, लेकिन सबसे ज्यादा पढ़ने लिखने वाला बच्चा था, लेकिन था सबसे गरीब। फौरन उसी दिन उन्होंने खुद बनफ्स नफीस जो है वो निकाह पढ़ाया। ये होता है अंदाज, ये होती है नेक नियति, ये होता है खुलूस। जब आप अपनी नेक नियति और खुलूस रखेंगे तो यकीन कीजिए कि सामने वाला भी किसी किस्म की चीटिंग फ्रॉड से काम नहीं लेगा। हमारे एक दोस्त कंपनी में काम करते थे, उनकी कहा गया कभी इन्वेस्टिगेशन करनी आपकी कंपनी में आके पूछा जाएगा, आपकी कंपनी में आके पूछा जाएगा। अब वो कंपनी में इंतजार कर रहे हैं, तमाम चौकीदार पियन तमाम मैनेजर वगैरह सबको बता दिया भाई वो आएंगे साहब, थोड़ा सा ख्याल रखना, ये रखना, महीना गुजर गया। अरे उनकी आदत थी कि खरादार की मजलिस में बाजमात जहर नमाज पढ़ा करते थे, एक दिन वो अपने होने वाले ससुर से मुलाकात हो गई, अलग से अलग हुई, गुफ्तगू हुई, बात हुई, फिर जाने लगे, कहने लगे कि आप जो है वो कंपनी नहीं आए मुझसे मिलने, बस बेटा आपसे मस्जिद में मुलाकात हो गई, काफी है। यकीन कीजिए कि उस लड़के ने कहा कि मुझे लड़की को भी नहीं देखना और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जो साहब मेरा होने वाला ससुर मस्जिद में चंद कलमात चंद जुमलात से मेरी शख्सियत का अंदाजा लगा ले और जिसको ये फिक्र ना हो कि मैं किस कुर्सी पे बैठा हूँ, बस ये देखकर वो खुश हो गया कि मैं बाजमान नमाजी हूँ, पाबंदी से मस्जिद में आता हूँ। देखिए जो रिश्ते मस्जिदों में तय होते हैं, जो निकाह मस्जिदों में होते हैं, उनकी बरकत होती है। बैंक्वेट हॉल में आपने लाखों रुपए खर्च कर दिए, क्या फ़ायदा ऐसी शादी का जो जिसकी इब्तदा गुनाह से हो, जिसकी इंतहा जो है गुनाह पर हो। तो इब्तदा जितनी जल्दी कर सकते हैं कीजिए। नंबर दो, लड़कों की शादियां, लड़कियों की शादियां जितनी जल्दी कर सकते हैं खुदारा बहुत जल्दी कीजिए, क्योंकि अगर आप ये कहेंगे भाई पहले ज़माने में ऐसा ऐसा होता था, तो यकीन कीजिए पहले ज़माने में गुनाहों की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। पहले आपको फला मोहल्ले, फला गली, फला पार्क, फला मुंडेर, फला पान की नुक्कड़ की दुकान पे जाके बैठना होता था, फिर आप बुरे बनते थे। अब आप घर बैठे बुरे बन रहे हैं। होम डिलीवरी, पहले खाना खाने फला 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 जगह, आप तो फ़ोन कर दें खाना पहुंच जाएगा। तो गुनाहों की होम डिलीवरी, फ्री डिलीवरी हो रही है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता। गुनाह आपके पास, गुनाह आपके पास क्या, आप घर से निकले गुनाह आपके पॉकेट में, जब चाहे गुनाह शुरू कर दें करना, कोई ऐसा मसला नहीं। बहरहाल उनसे ये गुफ्तगू हुई और यकीन कीजिए मुझे इतना अफसोस हुआ अपने ऊपर, और हम जो यहाँ जिस माहौल में रह रहे हैं, जितने परेशान और जितने कंसर्न मगरिब के वाले हैं उतने कंसर्न हम नहीं हैं। यकीन कीजिए इतने बाअदब जानो तलमस तय करके आहिस्ता धीमे धीमे खौफजदा लहजे में आयतुल्लाह बशीर नजफी के पास हम जब गए, तो एक लड़का सवाल कर रहा है कि हम गुनाहों से कैसे बचें। बता, हमसे पूछ लेता, हमने कहा हम बता देते। इतना छोटा सा सवाल, आम सा सवाल पूछने से बशीर नजवी के पास आया, तो बड़ी चीज ने मिसाल दी कि देखें आप कहाँ रहते हैं। मैं वेस्ट में रहता हूँ, यूके में रहता हूँ। अच्छा, आपके वहाँ पे सीसीटीवी कैमराज होंगे? हाँ हाँ बहुत है। हम तो सिग्नल तोड़ दें, पता भी नहीं चलता, कोई शख्स भी मौजूद नहीं होता। घर आते हैं तो वो टिकट लगा हुआ होता है, यानी चालान का टिकट लगा हुआ होता है कि आपने फला जगह ये तोड़ा था और ये इसकी पिक्चर है, आपकी तो पिक्चर खींच ली गई है। तो अगर आप ये जहन में रख लें कि खुदा मुझे देख रहा है, तो बस काफ़ी है। अपने बच्चे के जहन में भी आप ये डाल दें कि खुदा तुम्हें देख रहा है, तो बस ये काफ़ी है। आयतुल्लाह बहजत से एक शख्स गया और पूछा कि मैं इल्म इरफान, इल्म इखलाक सीखना चाहता हूँ, अपने आप को सुधारना चाहता हूँ, तज़किया नफ्स करना चाहता हूँ, कोई अच्छी सी किताब का नाम बताइए। उन्होंने कहा कि इखलाक को सुधारने के लिए ज़रूरी नहीं कि कोई किताब पढ़ी जाए, फ़कत एक जुमला काफ़ी होता है। अब वो परेशान, भाई कौन सा जुमला चले वही बता दीजिए। तुम याद रखो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, अल्लाह तुम्हें हर वक्त देख रहा है। अब देखें सीसीटीवी कैमरे ने आपको अलर्ट कर दिया है, दावतों में आप खा रहे होते ना नोच के हैंडल वाली बोटी, और एकदम से कैमरा आ जाए, एक मिनट बेटा आप पीछे बोटी छुपा लेते हैं, हाँ जी अब खींच लो, जब वो चला जाता था फिर आप अपना खाना अपने स्टाइल से शुरू कर देते। तो बस ये समझ लीजिए ये दो कैमरे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और जिस जमीन पे है वो खुद एक कैमरा है, आसमान एक कैमरा है, आसपास के जो लोग गवाही देंगे वो कैमरा, आपके आजा जवारे गवाही देंगे, ये आपके कैमरे। तो ये बात उनके सामने हुई। फिर एक बात मीडिया के हवाले से हुई, और वो हमने खुद सवाल किया आयतुल्लाह बशीर नजफी से कि हम अपने बच्चों को मीडिया की यलगार से कैसे बचें। उन्होंने फौरन जो है वो आंखों ऐनक के ऊपर से देखा, आप खुद बच दें। हम सहम गए, हमने निगाहें नीचे कर ली। आप खुद बचिए मीडिया से, फिर आप बच्चों को कहें। आप खुद बच्चों को कितना टाइम देते हैं मुझे बताएं, आप घर आके क्या करते हैं? यही कर रहे होते हैं, मोबाइल से खेल रहे होते हैं। जब आप मोबाइल से खेलेंगे, टीवी के आगे, पहले हम नुक्कड़ में बैठा करते थे, फलां दोस्त आ गया, फलां की बैठक है, अब हम घर में आके टीवी चैनल या मोबाइल पे लगे हुए होते हैं। एक ही कमरे में चार अफराद मौजूद होते हैं और सब अपनी अपनी धुन में मगन। एक कमरे में चार दोस्त बैठे हुए थे, एक दोस्त उठ के जाने लगा, कहने क्यों जा रहे हो? ताकि उसने कहा ताकि आप लोग मुझसे बातें करें। अरे तुम कमरे से बाहर जा रहे हो ताकि हम तुमसे बात करें? जी बिल्कुल, आप लोग मैसेज पे अपने अपने उन दोस्तों से बात कर रहे हैं जो कमरे में मौजूद नहीं है, तो मैं भी चाह रहा हूँ कि कमरे से बाहर चला जाऊँ ताकि आप मुझे पूछें भाई कहाँ हूँ, हाउ आर यू, हाउ इज एवरीथिंग। सिंगापुर में बाकायदा एक सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है। कौन सा सॉफ्टवेयर? कि जो कमरे में बैठे हुए अफराद का मोबाइल ब्लॉक कर देगा और वो कोई मैसेजिंग नहीं कर सकेंगे। तो खुदा रहा वो जो है मोबाइल यहाँ पे वो सॉफ्टवेयर यहाँ पे भी आ जाए। चाइना की आबादी कितनी है? 100 करोड़, 1 अरब। पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 20 करोड़। हमारी आबादी 5 गुना कम है, चाइना की आबादी 5 गुना ज्यादा है। तो ये जो मैसेजेस होते हैं या कॉल्स होती हैं, चाइना में ज्यादा होनी चाहिए या हमारे यहाँ? चाइना में ना, ठीक है, चाइना में ज्यादा होनी चाहिए। कितनी गुना ज्यादा होनी चाहिए? 5 गुना। ये न्यूज में बता रहा हूं, पाकिस्तान में मैसेजिंग और कॉल्स चाइना से 5 गुना ज्यादा होते हैं। अखबार की न्यूज है, मैसेजेस पाकिस्तान में चाइना के मुकाबले में, व्हाट्सएप आप देख रहे होते हैं, देखते देखते पॉप्सअप, मतलब आप ये खत्म भी नहीं करते हैं कि आज कौन कौन से मैसेज आए। मैसेज देखने के दौरान मैसेजेस आ रहे होते हैं और लोग परेशान होते हैं कि यार एक एक घंटा जो है वो मैसेज देखने में। अल्लाह ताला उस शख्स को गैर जरूरी कामों में उलझा देता है जो जरूरी काम नहीं करता। हम नहीं कर रहे ना जरूरी काम, नमाज नहीं पढ़ रहे, कुरान नहीं पढ़ रहे, दुरुस्त में नहीं आ रहे, मजालिस में नहीं आ रहे, हम जो है बच्चों की तरबियत नहीं कर रहे, तो अल्लाह ताला हमें ऐसी गैर जरूरी कामों में उलझा देगा। किसी ने पूछा अल्लामा मजलिसी एक दिन में 1000 सफात कैसे लिख लिया करते थे, तो दूसरे शख्स ने कहा उस जमाने में फेसबुक नहीं था। बस एज सिंपल एज दैट, उस जमाने में फेसबुक नहीं था, उस जमाने में फजूलियात नहीं थी। एक सवाल जो आयत अल्लाह बशीर नजवी से किया गया कि लड़कों के हवाले से, कि मैं बहुत परेशान हूँ, लड़के के जो जो स्कूल है उसमें अजीब व गरीब हुलिये के लोग मैंने देखे हैं, लड़के लड़कियाँ गले में हाथ डाल के बाहर निकल रहे होते हैं, मैं अपने लड़के को निकलता हुआ देखता हूँ अकेले, तो मैं कहता हूँ कि अभी तो ये ऐसा है लेकिन आइंदा क्या होगा। तो पहले तो उन्होंने ये जवाब दिया कि आप फिक्र ना करें, आपका बच्चा वही करेगा जो आपने जवानी में किया था। अब आदमी कांप के रह जाता, नहीं सुल्ताना डाकू भी हो ना, तो वो नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा डाकू बने। सुल्ताना आपने जो गुनाह किया तो आप वो भी नहीं जाएंगे, क्यों? आप उसके जरर रसा असरात से वाकिफ हो चुके हैं। चले मैं क्या करूं? चले आप अपने बच्चे की निगरानी करें। क्या मतलब मैं कैसे निगरानी करूं? क्या बच्चे के साथ जाऊं, बच्चे के साथ बैठूं उठूं? उन्होंने कहा फिर आप बच्चे ना बनाइए। बड़े आहिस्तगी से उन्होंने कहा बच्चे ना बनाइए, फिर आप क्यों टेंशन? देखें बच्चे पैदा करना वाजिब नहीं है, बच्चों की तरबियत वाजिब है। 1 2 3 4 5 कितने बच्चे आ रहे भाई, ये वाजिब नहीं है, इट्स अप टू यू, लेकिन तरबियत वाजिब है। ये जहन में रखिए कितने बच्चों की तरबियत आप कर सकते हैं, उसी हिसाब से उन्होंने जो कहा कि बच्चे बनाइए। देखिए बच्चों की निगरानी कीजिए लेकिन एजेंसीज की तरह नहीं कीजिए, रंगे हाथों मत पकड़िए। हम बड़े फख्र से कहते हैं कि बच्चे को रंगे हाथों आपने पकड़ लिया। अगर आपने बच्चे को रंगे हाथों पकड़ लिया तो बस उसकी इज्जत खराब। अब वो उम्र भर भी सजदे करे तो ये कहेगा मेरे बाप ने मुझे फला गुनाह करते हुए पकड़ लिया था, बस अब क्या फायदा अपने आप को नेक बनाने का। कभी भी बच्चे को रंगे हाथों ना पकड़े, निगरानी जरूर करें, एक एक मैसेज चेक करें। स्पेशली लड़कियों के हवाले से मैं कह रहा हूं, ये बहुत ट्रेंड हो गया है फेसबुक व्हाट्सएप पे अपनी तस्वीरें भेजने का। खुदारा ये बंद कीजिए, खुदारा ये बंद कीजिए, खुदारा ये बंद कीजिए, बहुत गलत ट्रेंड है लड़कियों का। स्पेशली लड़कों के भी हवाले से मैं कहूंगा, एक रियाकारी है, एक जो है खुद नुमाई है। एक साहब ने बड़ा अच्छी बात की कि आपका व्हाट्सएप इंटरनेट जो है वो रियाकारी में मुब्तला कर रहा है। भाई ये किसका रोल है? मुस्लिम ना नकील का। फौरन आपने सेल्फी लेनी शुरू कर दी, ये मुकाम रद्द शब्द आपने सेल्फी। अरे उस मुकाम को समझो, उसकी मारिफत हासिल करो, वहां की अस्कार करो, वहां के अमाल करो, तुम्हें सेल्फी की फिक्र है। और बाकी सब बातें आपको पता ही नहीं होता हम कहाँ कहाँ गए थे। एक मिनट सर मैं मोबाइल पे चेक करके बताता हूँ मैं कहाँ कहाँ गया था। मोबाइल वो कार में मौजूद एक लड़की, उसके पास S7 Edge, फखर से वो तस्वीरें खींच रही है। तो किसी ने कहा कि आपके आपकी सेंचुरी हो गई, जो टारगेट लेकर आई थी आपकी, मैं 100 सेल्फी बनाऊंगी। तो कहने लगी नहीं, 1000 होने वाले, 1000 पिक्चर्स। तो आप देखिए कि इंसान जो है वो असल हकीकी मारिफत से निकल कर एक रियाकारी वाली जिंदगी की तरफ आ गया। तो देखिए मैंने बिल्कुल सही कहा, इसमें कोई मजाकी और बुरा मानने वाली बात नहीं है। यहाँ पे हमारे बच्चे मौजूद नहीं हैं तो खुल के गुफ्तगु हो सकती है। इंतहाई चाबुक दस्ती बल मगर इंतहाई राजदारी से उसकी निगरानी करें। अगर खुदा ना खास्ता कोई केस सामने आ जाता है तो जल्दी मत कीजिए सजा देने में। अपने आप को देखिए, आपने भी जिंदगी गुजारी है, आप मासूम नहीं हैं। अपने तकवे पर, अपने बच्चों के तकवे को महमूल ना करें, अपने बराबर ना बनाएं। तुम्हें नमाज शब पढ़नी है, तुम्हें 11 रकातें पढ़नी है, तुम्हें अफ़ को इतनी मरतब पढ़ना है, अल्लाह माज़े को मैंने नार इतनी मरतब पढ़ना है, तुम्हें नवाफिल इतनी पढ़नी है, मुस्तब नहीं। बच्चों को उसके हिसाब से देखिए, उसके हम असर लोगों की तरफ से देखिए, और बच्चों पे लग्जिशों के हवाले से डांट डपट से ज़्यादा उनके अच्छे कामों की हौसला अफजाई कीजिए कि हमारे बच्चे ने आज जो है नमाज शब पढ़ी है माशाल्लाह फजर से पहले उठ के, आज मैं ने इसी खुशी में खीर बनाई है, हमारे बच्चे ने माशाल्लाह मुस्तहब रोज़ा रखा है, चलें आज इस खुशी में हम जो है वो इसको जो है घुमाने ले जाते हैं। तो बच्चों की निगरानी कीजिए, बच्चियों की खसूसी तौर पर निगरानी कीजिए, जिन जिन बच्चियों के पास मोबाइल है उनको पाबंदी से चेक कीजिए, नहीं आता सीखिए हिस्ट्री कैसे चेक की जाती है, खसूसी तौर पर बच्चियों की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी जो चैटिंग है उसकी पूरी हिस्ट्री रखिए, लेकिन लग्जिश पे बहुत ज़्यादा सख्ती ना कीजिए, अपने आप को मद्दनज़र रखिए, वो गैर मासूम है, आप भी गैर मासूम है, बहुत नरमी से बहुत तरीके से बहुत ही हिकमत अमले से उसको समझाइए। बहरहाल ये चंद बातें थी, मुझे 15 मिनट दिए गए थे और शायद मैं अपने टाइम से एक्सीड कर गया हूँ। देखिए रसूलुल्लाह के पास एक शख्स आया, ये चार बातें मैंने आपको आयतुल्लाह के हिसाब से सुनाई, अब इन आयतुल्लाह और हमारे और तमाम दुनिया के जो लीडर और रहनुमा हैं रहमतुल्लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आया रोता हुआ, आया लिटरली रोता हुआ एक शख्स आया, कहने का खुदा ने एक आयत उतारी है, या अय्युहल लजीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वकूदुहन नासु वल हिजारा, कौन सी आयत ये आयत, या अय्युहल लजीना आमनू कू अनफुसकुम, ए ईमान वालों बचाओ अपने आप को, व अहलीकुम अपने घर वालों को, नारा किससे, आग से, कि जिसका ईंधन वकूदुहन नासु वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। रोता हुआ आया ए रसूलल्लाह, अच्छा उस जमाने के एराबी जो थे वो भी बड़े माशाल्लाह टू द पॉइंट होते थे, जो बात होती थी दिल में वो रसूलल्लाह से कह दिया करते थे, ए रसूलल्लाह हमारा अपना बचना कोई आसान था जहन्नम की आग से, जो अल्लाह ने घर वालों की भी जिम्मेदारी डाल दी। रसूल ने मुस्कुराते हुए कहा कि घबराओ मत, जो तुम करते हो बस वही करो, जो तुम करना चाहते हो जो तुम करते हो बस वही जिम्मेदारी डालो, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मेरा बेटा जो है मुश्तहिद लेवल के तकवे का मुजाहिरा करे। अच्छा इस बात को आप इस तरह भी कह सकते हैं, रसूल ने क्या कहा कि जो तुम करते हो वो कहो, अब आप जो कहना चाहते हैं वो करके दिखा दिए, इसको हम यूं भी कह सकते हैं, जो आप कहना चाहते हैं नमाज शब की पाबंदी करवानी है, आपको टीवी से पीछा छुड़वाना है, तो आप पहले खुद करके दिखाइए, वला तकूलू लिमा तफअलून, तुम वो बात कहते क्यों हो जो तुम करते नहीं, वो करके दिखा दीजिए, और फिर जो है वो अपने बच्चे से जो है कहिए कि मैं ये, बल्कि आपको इंशाल्लाह कहना नहीं पड़ेगा, बच्चा देखने से ज़्यादा सीखता है बनिस्बत सुनने के, हमेशा याद रखिए आपको। और माजरत के साथ ये नहीं कर सकते तो अली अकबर का मातम करना भूल जाइए, शहजादा कासम के लाशे की पामियाली का तस्करा ना कीजिए, और मोहम्मद पे ना गिरिया कीजिए, शहजादा अली अकबर को भूल जाइए। बड़े अफसोस के साथ, बड़ी तल्ख बातें हैं, लेकिन ये तल्ख बातें उस शरबत के गिलास में जमी हुई शक्कर की तरह हैं, जो आखिर में शरबत पीने के बाद आपके मुंह में जाती होती तो चीनी है लेकिन तल्ख लगती है। क्यों हमारा बच्चा 3 घंटे 2 घंटे की फिल्म देखता है और कहता है अम्मा मुझे सुपरमैन का लिबास ला दो, मैं सुपरमैन बनूंगा, मैं बैटमैन बनूंगा, मैं स्पाइडरमैन बनूंगा, मैं आयरन मैन बनूंगा। 2 महीने 8 दिन आजादारी गुजारने के बाद हमारा बच्चा क्यों नहीं कहता कि मुझे शहजादा अली असगर बनना है, मुझे शहजादा अली अकबर बनना है, मुझे ऑन मोहम्मद बनना है, अम्मी मुझे ऐसा बना दीजिए, मुझे क्या करना पड़ेगा, क्यों नहीं सर पे अमामा रखता, क्यों नहीं अबा कबा पहनता, क्यों नहीं नमाज शब के लिए घुस जो है सजदे में जो है झुक जाता कि अम्मी अम्मा मुझे ऐसा बना दो, अब्बा मुझे ऐसा बना दो, मैं ऐसा बनूंगा और ऐसा करके दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसके वालिदैन जब मजलिस में उसको लेके जाते थे तो चिप्स का पैकेट साथ होता था, कोल्ड ड्रिंक साथ होती थी, पजल साथ होते थे, कलरिंग मटीरियल साथ होता था। आप अपने बच्चे को 1 घंटा भूखा प्यासा नहीं रख सकते तो 14 घंटे माह रमजान में क्या भूखा प्यासा रखेंगे? आप अपने बच्चे को पेट भराकर और मजलिस के दौरान पेट भरा रहे हैं एक भूखे प्यासे की याद में, वो भूखे प्यासे के मसाइल कैसे सुनेगा, कैसे आंसू आएंगे चिप्स खाते हुए कोल्ड ड्रिंक पीते हुए? अब आप कहेंगे भाई बच्चे हैं बहलाना पड़ता है, 1 घंटे बच्चे को बहलाना कोई मुश्किल काम है? चले छोड़िए बच्चों को, बड़ों के साथ क्या करते हैं? बड़ों से अभी आपने पूछा कि आज क्या पढ़ा गया, क्या रिवायत थी, क्या आयात पढ़ी गई, क्या नुकात, क्या वाकयात? हाँ ये पूछते हैं क्या क्या था, बिरयानी थी कि कौरमा था, बालोशाही थी कि नमक मारे थे कि ताफ्तान थी कि कबाब थे, तो मुझे बताइए, हम में से कितने लोग हैं जो मजलिस में आने के बाद, मजलिस से आने के बाद बच्चे से पूछते हैं कि बेटा क्या पढ़ा, क्या सीखा? कभी कहा आपने बच्चे से, बेटा बेटा इसको लिख के लाओ? हैंड राइटिंग के लिए तो हम बच्चे को कह देते हैं कि रोजाना एक सफाई लिखो, एक कॉम्पो, एक कॉम्प्रीहेंशन। लेकिन बहरहाल देखें, हम कितने बुरे ही सही। जैसे मैंने कहा कि सुल्ताना डाकू भी जो है वो नहीं चाहेगा, सुल्ताना डाकू को जब फांसी दी जा रही थी तो सुल्ताना डाकू से पूछा कि तुम इतने बड़े डाकू किस तरह बने, किसने तुम्हें इतना बड़ा डाकू बनाया? उसने क्या जवाब दिया कि मेरी माँ ने मुझे डाकू बनाया। कैसे चलेंगे? बचपन में मेरी माँ ने मुझसे अंडा मंगाया तो मैं बगैर पैसों के अंडा चुरा के ले आया। मेरी माँ ने पूछा नहीं कि ये अंडा कहाँ से आया, और तल के खिला दिया। उसके बाद रोटी, उसके बाद खाना, उसके बाद लिबास, लेकिन मेरी माँ ने कभी पूछा ही नहीं। और मेरी हिम्मत बढ़ती गई और मैं इतना बड़ा डाकू बन गया। तो हमारी माएँ, हमारे बाप जब तक अपने बच्चों से पूछेंगे नहीं कि बेटा आज स्कूल में क्या हुआ, आज मजलिस में क्या पढ़ाया गया, आप आज किस किस से मिले, पुलिस मैन की तरह नहीं, एक शफीक माँ और एक शफीक बाप की तरह। तो अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपने बच्चों की तरबियत करने की तौफीक अदा फरमा। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को अहले बैत के बच्चों के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अदा फरमा। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को इमाम ज़माना का सिपाही बना, इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, और हमें उनके अनसार व आवान में शामिल फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।
النجم يا مولاي، النجم يا صاحب السماء.